हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 42। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए गुरु अगौरंग से कृपा की याचना करेंगे और सच्चे हृदय और पवित्र बुद्धि के साथ मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथ वितं तं सजीवम्। सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसूतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 42। मेरे साथ साथ भगवद गीता के इन शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अर्जुन कहते हैं, दोषैरे तै कुलक नाना वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ति जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। सॉरी, दोषैरे तै कुलक नाना वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ति जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। फिर से दोषैरिताय कुलक्षणानां वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ति जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। एक बार लास्ट देखो, इसमें कितनी दफा धर्म शब्द आया है। उत्साद्यन्ति जाति धर्मा कुल धर्मा से शाश्वता, यानी कि दो दफा आए हैं, दो धर्म की बात हो रही है यहाँ पर, एक जाति धर्म एक कुल धर्म। एक दफा से फिर से हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया साथ दीजिए। दोषैरिताय कुलक्षणानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ति जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। अब शब्दों का अर्थ देखिए। दोष है यानी ऐसे दोषों से, कैसे दोषों से, जैसे अर्जुन भगवान को बता रहे हैं ना कि अगर हम लड़ाई करेंगे तो उससे कुल का नष्ट हो जाएगा, कुल का नष्ट हो जाएगा तो अधर्म धर्म खत्म हो जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा तो अधर्म ना प्रमुख हो जाएगा, और अधर्म अगर जोर हो जाएगा तो कुल की स्त्रियां अपवित्र हो जाएंगी, स्त्रियां अपवित्र हो जाएंगी तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, और जब वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो फिर पितृ जो है उनको पिंडदान नहीं मिलेगा, श्राद्ध तर्पण नहीं होगा, तो वो सब नरक में चले जाएंगे। तो अब अर्जुन बता रहे हैं ऐसे दोषों से, जब ऐसा होगा तो दोषे रहते इन सब से कुलग नाना मीन्स परिवार नष्ट करने वालों का, यानी कि जो ऐसे लोग ऐसा कार्य करेंगे ना जो परिवार का नष्ट करेंगे और उससे सब कुछ होगा, तो क्या होगा, वर्ण संकर कारक है, तो अवांछित संतानों के कारणों से, जब अवांछित संतानें होंगी ना, सारी संतानें अब अवांछित उत्पन्न होंगी क्योंकि धर्म नष्ट हो गया, कुल की स्त्रियां अपवित्र हो गई, और ऐसे अवांछित संतानें उत्पन्न हो गई तो फिर क्या होता है, उत्साद्यन्ते, ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द यहाँ पर है, उत्साद्यन्ते जाति धर्म, उत्साद्यन्ते मतलब नष्ट हो जाएगा। इससे क्या नष्ट होगा, अगर अवांछित संतानें उत्पन्न होती है ना तो उससे क्या नष्ट होगा, जाति धर्म, जो सामुदायिक योजना है, यानी कि जो अब जिस जाति के हो ना, जैसे हर जात के धर्म होते हैं, जो आप कहाँ पर भी हो, जैसे आपकी जाति के धर्म होते हैं ना वो नष्ट हो जाएंगे, और कुल धर्म और जो पारिवारिक परंपरा है ना वो नष्ट हो जाएंगी, वह शाश्वता जो सनातन है। समझ में आ रहा आपको? अब इसका अनुवाद देखिए, अर्जुन कह रहे हैं जो लोग कुल परंपरा को नष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य भी नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें नष्ट हो रही हैं, एक क्या, जाति धर्म और कुल धर्म। अब देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं, ये धर्म जो है ना वो बहुत आवश्यक है, धर्म ही मनुष्य को पशु से अलग करता है, जैसे आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्, यानी कि चार चीजें जो है वो पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं, वो अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य को ये मनुष्य बनने के लिए चार चीजें छोड़नी पड़ेंगी, ऐसा नहीं, उनको आहार भी करना पड़ेगा, घर भी बनाना पड़ेगा, संतान भी उत्पन्न करनी पड़ेगी और विश्राम भी करना पड़ेगा, यानी आहार निद्रा भय मैथुन ये सब करना पड़ेगा, लेकिन सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्, अगर खाली यही चार करेंगे, सिर्फ यही चार कार्य करेंगे तो नथिंग एनी डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, अगर आप खाली यही चार कार्य करते हो तो फिर मनुष्य में और जानवर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जानवर भी तो वही कर रहा है, फिर क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा ये चार तो करने ही है, एक्स्ट्रा चार और क्या करना है, शास्त्र कहता है धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्मा विहीनो पशु भिर समाना, अगर इसमें ऐड कर दिया जाए धर्म को तो वो विशेष है, वही एकमात्र डिफरेंस है बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन। सिर्फ एक धर्म का ही अंतर है, अगर मनुष्य के अंदर धर्म नहीं है तो वो सामान्य एतत् पशु भेदानाम, और धर्मो ही एको अधिक विशेष। सिर्फ एक धर्म ही ऐसा है जो कि मनुष्य को जानवरों से डिफरेंट कर देता है, अलग कर देता है, उससे ज्यादा ऊपर वाले स्टेज पर लेकर जाता है। अब धर्म की परिभाषा क्या है, आप धर्म की परिभाषा क्या है वो आप क्या हो उससे डिपेंड करता है, आप क्या हो उससे डिपेंड करता है। अब आप क्या हो, शास्त्र क्या कहता है, हर मनुष्य की एक अलग अलग स्टेज होती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर मनुष्य का एक अलग अलग धर्म है, यानी कि ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है और शूद्र का धर्म अलग है, ब्रह्मचर्य का धर्म अलग है, गृहस्थ का धर्म अलग है, वानप्रस्थ का धर्म अलग है और संन्यास का धर्म अलग है। लेकिन ये सब उपाधियां हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये सब उपाधियां हैं, ये सब आप नहीं हो। महाप्रभु कहते हैं ना हम विप्र न च नरपति न वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च ग्रहपति न वानस्थो यतुर्वा, किंतु प्रोदान्यखिलः पूर्ण अमृतस्तब्धेह गोपी भरता पद कमल दास दास दासानुदास। यानी कि वास्तव में ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना ब्रह्मचर्य हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ और ना ही सन्यासी हूँ। फिर क्या हूँ, मैं इन सब से ऊपर हूँ और जो गोपियों के भरता कृष्ण है उनके चरण कमलों के दासों के दासों के दासों का दासों। वास्तविक स्थिति क्या है कि हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान के दासों के दास हैं। तो हमारा अब धर्म जो है वो आपकी स्टेज को देखकर बनता है कि आप क्या हो। अब शास्त्र कहता है कि आप यह शरीर नहीं हो, क्योंकि अगर आप शरीर नहीं हो तो ना आप इनमें से कुछ नहीं हो सकते, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ये सब नहीं हो सकते आप, ना वर्णाश्रम। धर्म जो है वो तब तक पालन करना है जब तक कि आप इस स्टेज पर नहीं आते हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। ये बहुत ऊपर का स्टेज है और वास्तविक स्टेज है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 5, भगवान कहते हैं अपरियमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परा जीवभूतानहाभाहो ययेदं धार्यति जगत। कि ये जो बाकी सब है ना उपाधियां संसार में और सब कुछ जो भी है वो प्रकृति है और वो अपरा शक्ति है, वो नीचे वाली शक्ति है, लो शक्ति है मेरी, और एक पराशक्ति है वो इन सारी शक्तियों से ऊपर है। और पराशक्ति क्या है, जीव भूतान महाभाव ये दमधारी, वो जीव है, वो आत्मा है जो कि संपूर्ण इस सारी अपरा प्रकृति का विदोहन कर रही है, उसको यूज कर रही है। तो वास्तव में जो जीव है वही भगवान की परा प्रकृति है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जिस तरह से अपरा प्रकृति के अपने अपने धर्म हैं, जैसे हमने बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सब के अपने अपने धर्म हैं, तो डेफिनेटली परा प्रकृति के भी अपने धर्म होंगे। तो वास्तव में यदि आप परा प्रकृति हो तो यहाँ पर अर्जुन ने क्या बताया है, उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वत। यदि आप यहाँ पर जंग करोगे और ऐसा कार्य करोगे युद्ध के बाद क्या होगा, क्या नष्ट होगा, जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। अब देखो जाति धर्म और कुल धर्म ये व्यक्तिगत होता है, मतलब जो आपकी अभी इस संसार में स्टेज है यानी कि जो आप अभी हो उसके हिसाब से व्यक्तिगत और कुल धर्म। लेकिन उससे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है जो वास्तविक आपका धर्म है, क्योंकि आप भगवान की परा प्रकृति हो तो परा प्रकृति का जो धर्म है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी तरफ तो अर्जुन का ध्यान ही नहीं गया कि मैं भगवान की परा प्रकृति हूँ और भगवान की सेवा करना ही मेरा सबसे ज्यादा ना इम्पोर्टेंट धर्म है। और शास्त्र क्या कहता है, श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 6, 1.2.6 में वेद व्यास बताते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदुक्षजे अहेतुकी या प्रतिहिता ये यात्मा सुप्रसिद्धति। सवै पुंसाम परो धर्म, परो मना सबसे दिव्य धर्म, क्योंकि आप परा प्रकृति हो तो आपका धर्म क्या है, परा परा धर्म, परा प्रकृति का परा धर्म भी होना चाहिए ना। तो उन सब का जो मनुष्य है, जो जीव आत्मा है, सवै पुंसाम यानी कि जितने भी मनुष्य हैं, अब ये देखो ये परा प्रकृति, अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि परा प्रकृति तो जीव आत्मा है ना, जो भी जीव आत्मा चाहे कुत्ते में हो, चाहे कॉकरोच में हो, चाहे गटर के कीड़े में भी हो, वो भी परा प्रकृति। लेकिन यह परा प्रकृति का जो धर्म है वो केवल यहाँ पर पुंसाम लिखा, सवै पुंसाम, पुंसाम माना मनुष्यों के लिए है ये परा धर्म जो है वो केवल मनुष्य ही उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना पवित्र धर्म है, इतना दिव्य धर्म है कि आप किसी और योनि में इसको फॉलो कर ही नहीं सकते हो। आप और किसी योनि में हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकते हो। और परा प्रकृति का परा धर्म क्या है, यतोर भक्ति अदोक्षजे, भगवान की भक्ति करना। किसी कॉकरोच को आप ये परमिशन दोगे कि चलो ठीक है मेरे मंदिर में जाके सेवा करो, नहीं ना। मनुष्य को ही खाली ये परमिशन दी जाती है, या खाली मनुष्य को ये अधिकार दिया जाता है कि वो भगवान की भक्ति करे। और यहाँ पर कहते हैं सुत्त गोस्वामी, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे, क्यों अहेतुकी या प्रतिहिता, कैसी होनी चाहिए भक्ति अहेतुकी। अहितुकी का क्या मतलब होता है, अकारण्य, उससे आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ कृष्ण तुम्हारे लिए, उसकी बदली में तुम मेरा ये कार्य करो, नहीं। वो आप सौदा थोड़े करना है भगवान के साथ, ये आपका धर्म है। धर्म कैसे है, जैसे माँ बाप का धर्म कैसे होता है कि अगर आप स्टेज पे आओ, इस मनुष्य लेवल पे आओ, तो क्या होगा, माँ बाप का धर्म होता है कि बच्चे के लिए, माँ बोलती है कभी मैंने आपके लिए खाना बनाया इसकी बदली में मेरा ये कार्य करो, नहीं ना। बाप कभी बोलता है कि मैं सुबह से लेकर ऑफिस में आपके लिए कार्य कर रहा हूँ उसकी बदली में आपको ये करना, नहीं। वो धर्म होता है, बच्चे का भी धर्म होता है माँ बाप का आदर करना, उनकी बात का मानना। और है ना, माँ बाप का धर्म होता है अपने बच्चे के ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना। लेकिन अगर वो एक दूसरे का कार्य करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के कार्य का बदला दे रहे हैं वो। और उसी तरह से जब आप भगवान की सेवा करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो भगवान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं छोड़ेंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, भगवान को बताने की जरूरत नहीं है कि भगवान आप, मैंने आपकी सेवा कर ली, अभी इसकी बदली में आप ऐसा करो, ऐसा नहीं करना होता है। कभी बच्चा ऐसे बोलता है कि मैंने आपका ये काम किया उसकी बदली में मुझे खाना बना के दो, नहीं ना। माँ का फर्ज है कि बच्चे के लिए खाना बनाए, फिर बच्चे का फर्ज है कि माँ का आदर करे, उनके आदेशों का पालन करे। तो जो फर्ज होता है उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी होती है कि आप ऐसा करो, वो फर्ज हम खुद ब खुद निभा रहे होते। तो भगवान के लिए भी जो भक्ति करते हैं वो भी अहितुकी होनी चाहिए, यानी कि भगवान पे भरोसा नहीं है ना। वरना अगर भरोसा होता तो कभी भगवान को बोलते नहीं ऐसा करो। भगवान पे भरोसा रखना चाहिए कि वो मेरा अहित कभी नहीं करेगा। जब मैं पैदा नहीं हुआ था, माँ के गर्भ में था, तब भी मेरी आवश्यकताएं पूरी की। जब मैं पैदा हो गया, खाना नहीं खा सकता था, तब भी मेरी आवश्यकताएं पूरी की। और आज जब मैं इतना बड़ा हो गया, उनकी भक्ति कर रहा हूँ, वो टाइम में तो भक्ति भी नहीं कर रहा था, आज जब मैं उनके नाम का जप कर रहा हूँ, उनकी भक्ति कर रहा हूँ, उनकी पूजा कर रहा हूँ, क्या छोड़ देंगे, नहीं मेरी देखेंगे नहीं कि मेरे बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है। तो उनको बताना नहीं चाहिए भगवान को, अहितुकी, अहितुकी होनी चाहिए, अकारण्य भक्ति होनी चाहिए। बस मेरा ये कार्य है, मुझे करना यही है, मेरा धर्म ये है, सवै पुंसाम परो धर्मो। आप क्योंकि परा प्रकृति हो तो आपका धर्म ही ये है कि भगवान की भक्ति करें। और अहितुकी भक्ति होनी चाहिए, अप्रतिहिता यानी कि अप्रतिहिता होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चार दिन भक्ति की और पांच छह दिन, ऐसे करते हैं ना कुछ लोग, माला करते हैं फिर बोलते हैं आज नहीं हो सक रही माला, मुझे आज नहीं करी, मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन अप्रतिहिता लिखा है, शास्त्र कहता है इसमें खंडन नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। आप कोई भी स्टेज में, कोई भी स्थिति में, आज अगर देखा जाए, कलो काले हरिनाम संकीर्तन,
युग धर्म भगवान का नाम लेना है, ये युग जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेना ही हमारा एकमात्र धर्म है। और वो धर्म भी श्रील प्रभुपाद ने, वैसे तो कंटिन्यूस देना होता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कितना सीमित करके दे दिया कि आपको सिर्फ 16 माला जप करनी है। और 16 माला जप करना इतना अनिवार्य है जितने बाकी 4 कार्य अनिवार्य है। जैसे कभी हम सोते हैं, ऐसा कभी होता है कि हम सोना छोड़ दें कि नहीं भाई आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं रात को सो नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं करते। कभी ऐसा करते हैं कि भाई आज मैं खाना नहीं खा रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं, बहुत बिजी हूँ। नहीं ना, वो हमें जरूरी करना होता है ना, हर सूरत में वो हमें करना होता है। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू हैव नॉट टाइम फॉर चेंटिंग, उस दिन है ना तो आपको खाना खाना चाहिए और ना ही सोना चाहिए, क्योंकि इतना ही इम्पोर्टेंट खाना खाना है, उतना ही इम्पोर्टेंट सोना है, उतना ही इम्पोर्टेंट जप करना है। तो यदि आपके लिए आपके पास जप करने के लिए टाइम नहीं है तो खाना और सोने के लिए कैसे टाइम निकाल सकते हो? और आप बोलोगे अगर हम खाएंगे नहीं सोएंगे नहीं तो हमारे शरीर को नरिशमेंट नहीं मिलेगा, हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। तो परा प्रकृति हो, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और परा प्रकृति क्या है? आत्मा है। और सवय पुंसाम परो धर्मो, और परा प्रकृति को नरिशमेंट मिलती है, परा प्रकृति को पावर मिलता है किससे? भगवान के नाम से। तो जिस तरह आपको ये लगता है ना कि यदि हम खाएंगे नहीं तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, उसी तरह से यदि हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमारी आत्मा कमजोर हो जाएगी। वास्तव में तुम आत्मा हो, तो आत्मा की कमजोरी के बारे में सोचो ना कि उसको कितनी कमजोरी हो जाएगी जब हम भगवान का नाम का जप नहीं करेंगे। एक व्यक्ति रहा, उन्होंने ना श्री प्रभुपाद को बोला कि मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं एक दिन में 20 घंटे काम करता हूँ, मतलब कंटिन्यूस मुझे काम करना पड़ता है, और क्योंकि घर में फैमिली इतनी बड़ी है कि कंटिन्यूस मुझे पार्ट टाइम भी करना होता है और डबल डबल शिफ्ट करता हूँ, 20 घंटे काम करता हूँ, तो आप मेरे लिए कोई कंसिडर कीजिए। ऐसा कीजिए ना कि मैं ना 16 माला जप नहीं कर सकता हूँ, कुछ काम करके बताइए। तो श्री प्रभुपाद ने बोला कितने घंटे सोते हो? तो उसने बोला 4 घंटे सोता हूँ, 20 घंटे काम करता हूँ। तो बोले 4 घंटे सोते हो ना, देन नाउ स्लीप जस्ट फॉर 2 आवर्स, अब आपको 2 घंटे सोना है। मतलब सोना भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट चैंटिंग करना है। तो इतना जरूरी है माला करना, हमें जरूर अपनी माला कंप्लीट करनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हम ये सोचें कि माला मुझे रात तक कंप्लीट करनी है, रात तक बस, अभी रात पूरी पड़ी हुई है, पूरा दिन पड़ा हुआ है, अब तो जब करेंगे। ये ऐसा है जैसे आपको कंप्लीट नरिशमेंट तब मिलती है जब आप पेट भर के खाना खाते हो ना। एक टाइम में आप पेट भर के खाना खाते हो तो सुबह सुबह कैसे होता है नाश्ता, अगर आपको आधी रोटी सुबह को दी जाए, फिर वापस थोड़ा क्वार्टर दिया जाए, फिर क्वार्टर दिया, ऐसे नहीं ना, आपको सही तरह से ऐसे नहीं है। नींद भी देखो हम कैसे टाइम पर पूरा ऐसा है, रात को अगर आप सोते हो, अगर आप 11 बजे सोते हो, वापस आपको 12 बजे उठा दिया जाए कि भाई थोड़ा सो लिया अभी उठो, वापस 12 बजे उठाया गया, फिर 2-3 बजे वापस सोए, फिर वापस 4 बजे उठा दिया जाएगा, फिर वापस 5 बजे वापस सोए, ऐसा नहीं, आपको कंप्लीट 6 घंटे की नींद चाहिए होती कि भाई मुझे अभी सोना है इतना टाइम मुझे। तो इसी तरह से जब जो है ना वो भी कंटिन्यूस करेंगे ना, तो उससे पूरा पूरा हम लोगों को फायदा होगा, पूरा पूरा हमारा नरिशमेंट हमारी आत्मा को मिलेगा। कंटिन्यूस करना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस अभी 4 माला कर दिया, अभी छोड़ दो बाद में माला करता हूँ, नहीं। जितना एक ऐसा समय निकालना चाहिए अपने लाइफ का। हमारी सबसे बड़ी तपस्या क्या है कि हम एक ही समय में बैठ के 16 माला का जप करें, तो बहुत ही सुंदर है ये सुबह का समय, जिस टाइम पर और कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, और कोई आपकी है ना एक्टिविटीज नहीं होती है, बस एक ही काम होता है, क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं। आप 6 से 8 माला कर सकते हो या 5 से 7 माला कर सकते हो, आप अपने घर के शेड्यूल के हिसाब से, लेकिन ये सबसे बड़ा धर्म है। बहरहाल यहाँ पर अर्जुन ने क्या बताया, दोषे रहते कुलक नानाम वर्ण संकर कारक है। अगर हम ऐसा दोष करेंगे तो कुल का नष्ट होने से वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, और उत्साध्यंते जाति धर्म कुल धर्म से शाश्वत, और जाति धर्म और कुल धर्म विनष्ट हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से तात्पर्य में समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित किए गए हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त कर सके। शर्मोपा जी देखो कितनी सुंदर बात बता रहे कि आपके ये सारे जो मानव धर्म है ना, जो शरीर से रिलेटेड जितने भी धर्म है, सामुदायिक योजनाएं हैं, पारिवारिक कल्याणकारी जो कार्य हैं, वो क्यों है? वो इसलिए नहीं है कि इसी में गर्क रहो, बस आगे नहीं बढ़ो। वो क्यों है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य चरम मोक्ष, चरम लक्ष्य भगवान को प्राप्त कर सके। तो भगवान को प्राप्त करने का कलयुग में क्या तरीका है? भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना और अपने जो भी नियत कर्म है उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको भी तो साथ में लेकर चलना है ना। और आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। अनुत्तरदायी नायक, यहाँ पर शिवपाद जी ने ये शब्द उच्चारण किया, अनुत्तरदायी यानी कि जो अपने फराइज को पूरा नहीं करते, ऐसे नायक। नायक का मतलब होता है जो नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व का मतलब होता है कि जो राजा है, यानी कि नेत्र बोलते हैं आंखों को, ठीक है, और नेतृत्व मतलब दूसरों को जो दिखाते हैं कि भाई ये धर्म है, दूसरों को जो बताते हैं उनके धर्मों के विषय में, यानी कि जो नायक होते हैं, जो प्रधान होते हैं, जो लीडर होते हैं, हाँ लीडर्स के हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि जो नेतृत्व करता है वो अंधा नहीं होना चाहिए, है ना। जो आपको रास्ता दिखाने वाला है वो तो अंधा नहीं होना चाहिए ना। अगर अंधा किसी का नेतृत्व करे तो उस बेचारे का क्या हाल होगा? क्यों? क्योंकि वो अंधा है तो खड्डे में गिरने वाला है, और जो इसके पीछे चलने वाले हैं वो सब खड्डे में गिरेंगे। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के खंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलेगी। क्योंकि फिर अब क्या होगा, अगर ऐसे अनुत्तरदायी नायक जो है वो लीडर बनेंगे तो फिर समाज में अव्यवस्था फैलेगी। तो यहाँ पर देख ही नहीं रहा अर्जुन कि इनको मारना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये नायक बनने वाले हैं ना। अगर इनको नहीं मारेंगे तो यही लीडर लीड करेंगे, सबको राजा बनेंगे, और उसके बाद संसार के वैसे ही सारे धर्म नष्ट हो जाने वाले हैं। जो कुछ भी धर्म चल रही है वो सारे के सारे धर्म का विखंडन हो जाएगा, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, और फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाएंगे। क्योंकि रियल जो उनका उद्देश्य, अगर नायक ही अंधा है तो ऐसे भागवत में आता है अंधा अंधान्य थे, अगर वो अंधा किसी अंधे को रोड पार कराता है तो उसका एक्सीडेंट होना जरूरी है। तो हमें देखना है, क्षत्रिय का ये फर्ज है कि कभी भी किसी ऐसे अंधे को नायक बनने के लिए इजाजत ना दे, या उनको कभी भी इस तरह से प्रोत्साहन ना दे। तो अर्जुन भी क्षत्रिय था तो देख रहा था कि अधर्मी दुर्योधन अगर राजा बनेगा तो कितना नुकसान होने वाला है, तो उसको वो छोड़ रहा था, चलो ठीक है करो। लेकिन उसका ये अभी क्या था कि उसको लड़ाई में हराना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता है तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाएंगे, मनुष्य जानवर बन जाएंगे। क्योंकि अगर धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि धर्म तो नाश होने ही वाला है, अगर नेतृत्व करने वाला लीडर ही अंधा होगा तो धर्म का क्षय होना लाजमी है, और इस तरह से लोग जो है वो जानवरों की स्थिति पे आ जाएंगे और अपने उद्देश्य को भूल जाएंगे। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। शिव बाबा जी बता रहे ना, देखो अंधे हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चित ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। अगर ऐसे लोगों को हम फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कुव्यवस्था यानी कि फिर जो हमारे जितने भी वैसे ही धर्म है, अपना रियल धर्म तो भूल ही जाएंगे, और इस तरह से सारे मनुष्य जो है वो पशु योनि नीचे गिरेंगे, नरक में जाएंगे, और अन्य जानवरों की योनियां उसको मिलेंगी। इसलिए क्षत्रिय का ये धर्म है कि ऐसे कार्य नहीं होने दे। कुल धर्म का नाश, अभी जो उसने अर्जुन ने क्या बोला, मेरा जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी उसके लिए क्या था कि सारे लोगों का वास्तविक धर्म जो भगवान की भक्ति है, अगर ऐसे लीडर्स के हाथ में चला जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा, तो उसके बारे में अर्जुन को सोचना चाहिए था। ऐसे आप सबको समझ में आ रहा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।